हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। नैना के हाँ बोलने पर अक्षत ने बोलना शुरू किया, शायद मुझे तुम्हें उस तरह ड्रामेटिक फिल्मी स्टाइल में प्रपोज नहीं करना चाहिए था। उसी से तुम्हें ये गलतफहमी हुई, लेकिन वो बस एक मजाक था। और अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल हूँ। मैं तुमसे सारी बात बताऊंगा और तुम भी उसी तरह ध्यान से सुनना और समझना। मेरा मैनेजर अजय वो भी मुझसे यही बोल रहा था कि कल जो हम दोनों की साथ में फोटोज वायरल हुई हैं, उसके बाद मेरी इमेज पर गलत असर पड़ सकता है, तो उसे सही करने का मैंने ये सलूशन निकाला है। अगर मैं और तुम सिर्फ 2 महीनों के लिए एक फेक रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं होगा और मैं अपनी फिल्म की हीरोइन के साथ रिलेशनशिप की खबरों को नकार सकता हूँ और ये बता दूंगा कि मेरी गर्लफ्रेंड कोई और है। इससे मुझे 2 फायदे होंगे। मुझे किसी और के साथ फेक रिलेशनशिप में नहीं रहना पड़ेगा और मेरी फिल्म के लिए पब्लिसिटी और न्यूज़ भी मिल जाएगी। और सिर्फ 2 महीने के लिए ही क्यों, उसके बाद क्या? अक्षत की पूरी बात सुनकर नैना ने उससे सिर्फ इतना ही सवाल किया, अरे क्योंकि 2 महीने में ही मेरी फिल्म रिलीज होनी है और सिर्फ तब तक के लिए ही मुझे ये सब मैनेज करना होगा। उसके बाद तो मैं कुछ भी बोल दूंगा, ब्रेकअप हो गया हमारा या फिर मुझे कोई और पसंद आ गई, कुछ भी बोल सकता हूँ। तुमने धोखा दे दिया मुझे किसी और के साथ मिलकर, ये भी। और ये सारी खबरें फिर से मेरी अगली फिल्म के प्रमोशन में काम आ जाएंगी। नैना की बात सुनकर उसकी तरफ देखकर आंख मारते हुए अक्षत बोला। नैना फिर से थोड़ा सा सोच में पड़ गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इन सब चीजों का हिस्सा बनना चाहिए या नहीं। मेरी अलग भी एक लाइफ है और मैं अभी एक स्ट्रगलिंग मॉडल हूँ। हाँ, मैंने बहुत बड़ा नाम नहीं कमाया, लेकिन मैं भी कुछ तो कोशिश कर ही रही हूँ। और साथ ही मेरी जान पहचान वाले लोग वो मुझे ढूंढ लेंगे अगर, तो उन्हें क्या कहूँगी मैं? अक्षत की बात सुनकर नैना एक के बाद एक अपनी प्रॉब्लम और परेशानियाँ गिनवाती हुई बोली, अच्छा इसका मतलब तुम्हारी तरफ से हाँ है। अगर मैं तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में तुम्हारी हेल्प करूं, तो तुम मेरे साथ इस डील के लिए तैयार हो? नैना की बातें सुनकर अक्षत ने फिर से उससे पूछा, हाँ क्योंकि तुमने मेरी इतनी मदद की और अभी अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। और वैसे भी ये फेक रिलेशनशिप होगा तो हम दोनों का एक दूसरे पर कोई हक और एक दूसरे से कोई रिश्ता भी नहीं होगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाकी सारी चीजें, अगर किसी ने मुझे ढूंढने के लिए पुलिस में कंप्लेंट कर दी होगी या फिर वो जिसने मुझे किडनैप कराया था वो फिर से मुझे ढूंढने लगा होगा, तो? अक्षत की बात सुनकर नैना ने उसे इस बात के लिए हाँ करने की वजह बताई और साथ ही जो सवाल उसके मन में चल रहे थे वो सब भी अक्षत को बेझिझक बता दिया। अच्छा, तो तुम्हारे पास अभी मोबाइल फोन नहीं है और ना ही तुम्हारा कोई सामान, तो पहले मुझे वो सब अरेंज करना होगा और उसके बाद तुम अपने आसपास के, मतलब जो भी तुम्हारे करीबी लोग हैं, कॉल करके बता सकती हो कोई भी बहाना जिससे कि वो तुम्हें लेकर परेशान ना हो और उनसे बात करके कनेक्टेड भी रह सकती हो। नैना की बातें सुनकर थोड़ा सा सोचते हुए अक्षत बोला, लेकिन तुम मेरे लिए इतना सब क्यों? अक्षत की बातें सुनकर थोड़ा सा हैरान होते हुए नैना ने उससे सवाल किया, अरे अब तुम अक्षत कपूर की गर्लफ्रेंड हो तो इतना ये सब तो होना ही चाहिए और मैं तुम्हारे करियर में भी हेल्प कर सकता हूँ और वैसे भी पब्लिकली तुम्हारी आइडेंटिटी तो रिवील नहीं करनी है, तो तुम आसानी से किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर पाओगी। नैना के इस बात के लिए हाँ सुनकर अक्षत काफी खुश होते हुए मजाक में ये बातें बोला, क्योंकि उसकी काफी सारी टेंशन नैना के साथ एक रिलेशनशिप पर हाँ करने के साथ ही दूर हो गई थी, तो अब वो नैना की लाइफ की प्रॉब्लम थोड़ी कम करना चाहता था। 12:53 सुनैना और आदित्य की कॉल पर बातें सुनकर विराज काफी ज्यादा अपसेट हो गया और उसके बाद वो ना ही नेक्स्ट लेक्चर अटेंड किया और ना ही अवंतिका से बात करने गया, बल्कि वो सीधा ही कॉलेज से निकलकर अपनी कार लेकर वहाँ से चला गया। और अवंतिका को ये बात बाद में पता चली तो वो पूनम के साथ उसकी स्कूटी पर ही वहाँ से जाने लगी और उसी वक्त सुनैना भी कॉलेज से बाहर निकली ज्योति और देविका के साथ। लेकिन पूनम और अवंतिका दोनों सुनैना से बात करने में इतनी ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रही थीं और अवंतिका पहले ही परेशान थी कि उसे अपनी लग्जरी कार के बजाय आज पूनम के साथ उसकी स्कूटी पर घर जाना पड़ रहा था। ये विराज भाई भी अजीब है, अकेले ही चले गए और अब कॉल भी रिसीव नहीं कर रहे। और अवंतिका को इस तरह चिड़चिड़ाते हुए देख देविका और ज्योति हंसने लगी तो सुनैना भी हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन पूनम तब तक अपनी स्कूटी लेकर वहाँ से निकल गई। सुनैना भी अपने घर वापस जाने के लिए टैक्सी की और ज्योति देविका ने अपने दोनों सहेलियों को बाय बोलकर टैक्सी में बैठ गईं और टैक्सी में बैठकर वो फिर से नैना को कॉल करने लगी। वो पिछले दो दिनों से कई बार नैना को कॉल कर चुकी थी, लेकिन नैना का फोन अभी भी नहीं लग रहा था और उसका नंबर अब अनअवेलेबल बता रहा था। क्या है दी, अभी तक वापस नहीं आई क्या? कुछ दिनों के लिए ही तो आउट ऑफ सिटी जाना था और भले ही दूसरे सिटी में होती, लेकिन ये कौन सी बात हुई कि उनका नंबर ही नहीं लग रहा है? नैना का नंबर ना लगने पर ये सब सोचते हुए सुनैना काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन वो और कुछ कर नहीं सकती थी। लेकिन फिर तभी उसे ध्यान आया कि आदित्य काफी ज्यादा पावरफुल है, तो वो इसमें जरूर सुनैना की मदद कर सकता है। और आदित्य के बारे में ये सब सोचते हुए ही सुनैना के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई और आदित्य के साथ बिताए अब तक के सारे खुशनुमा और रोमांटिक पल भी उसे याद आ गए। 12:30। दूसरी तरफ अरुण को सुनैना ने दो दिन पहले ही कॉल करके बता दिया था कि वो अपनी जैकेट यहाँ पर उसके घर में ही भूल गया है, लेकिन पिछले दो दिनों से अरुण अपने पापा की दुकान के काम में ही बिजी था। उसे कॉलेज जाने का भी टाइम नहीं मिला था और उसका फर्स्ट ईयर था। वो वैसे भी पढ़ाई पर इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता था, कॉलेज भी बस दोस्तों के साथ घूमने फिरने और टाइम पास करने के लिए ही जाता था। लेकिन इन दो दिनों में उसका निकलना नहीं हुआ, वो सुनैना से मिलने भी जाना चाहता था, उसे देखने के लिए कि उसकी तबीयत अब ठीक है या नहीं। आज दो दिनों बाद कैसे भी करके अपनी बहन के घर जाने के लिए टाइम निकाला और घर से निकलकर सीधा ही अपनी बाइक से सुनैना के घर की तरफ जाने लगा। लेकिन सुनैना इस वक्त घर पर नहीं थी, ये बात अरुण को नहीं पता थी और वो घर पहुंचकर सीधा ही सुनैना दी चिल्लाते हुए उसके घर के अंदर जाने लगा। सुनैना तो घर पर नहीं थी, लेकिन स्वीटी आज घर पर ही थी और इस तरह से किसी लड़के के चिल्लाकर घर के अंदर आने की आवाज़ सुनकर स्वीटी तुरंत ही अपने कमरे से निकलकर सीधा दरवाजे की तरफ ही आने लगी और वो आवाज़ सुनकर बोली, ये कौन बदतमीज जाहिल गवार हमारे घर में घुस आया है? जरा सी भी तमीज नहीं है इसे, इस तरह से कौन चिल्लाता है घर के अंदर आते हुए? स्वीटी के साथ ही गीता को भी अरुण की आवाज़ सुनाई दी और वो भी वहाँ पर हॉल में आ गई, लेकिन स्वीटी उससे पहले ही दरवाजे तक पहुँच गई और अरुण भी जब तक दरवाजे के अंदर आता हुआ स्वीटी की ताने गई बात के कुछ शब्द तो सुन ही लेता है और वो सुनकर अरुण भी उसी अंदाज में ताना मारते हुए बोला, अरे अपनी बहन को आवाज लगाना कौन सी जाहिल गवार वाली हरकत है और तुम्हारा घर कैसे हो गया? ये तो मेरी दी और जीजू का घर है, हो कौन तुम जो मुझे इस तरह से?
और अरुण की नजर जब अपनी तरफ आती हुई स्वीटी पर पड़ी, जिसने लाइट पिंक कलर की ओवरसाइज टी शर्ट पर डार्क ब्लू डेनिम शॉर्ट्स पहने हुए थे और बिखरे हुए से खुले बालों के साथ चेहरे पर कंफ्यूजन लिए वो दरवाजे की तरफ ही आ रही थी, तो उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही अरुण एकदम चुप हो गया और आगे कुछ भी नहीं बोल पाया। लेकिन स्वीटी उसके सामने आकर भी उसी तरह से बोलती रही, क्या कहा तुमने मिस्टर, और हो कौन तुम, और इस तरह से चिल्लाना जाहिलियत और मैनरलेस हरकतें ही बोलते हैं, और तुम ना मुझे बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। वैसे किससे मिलना है तुम्हें, और आदित्य भैया अभी घर पर नहीं है तो प्लीज तुम बाद में आना। स्वीटी अरुण के सामने खड़ी होकर अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उसे थोड़े गुस्से से देखते हुए ये सारी बातें बोल रही थी, लेकिन अरुण को तो जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था और उसके बैकग्राउंड में बस कोई गाना या रोमांटिक धुन बज रही थी और वो बोलती हुई स्वीटी के खूबसूरत चेहरे, जिस पर कर्ली डार्क ब्राउन बाल बिखरे हुए थे, उसे ही निहार रहा था और साथ ही उसकी खूबसूरत काली गहरी आंखें भी उसे बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रही थी और वो कहीं और ही ख्यालों में गुम खोया हुआ सा स्वीटी के सामने खड़ा उसकी आंखों में ही देख रहा था। क्रमशः